ज्ञानं जनसलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटा विरवितो मंदीकृतेन्दीवरं जटंजागुटरोचिशाम्विदधतमपट्टं वरक्षस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो चलभुजं ध्यायेन् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे शिष्य गुरु गौरांग की कृपा से गिरिराज जी की कृपा से आज हम लोगों का प्रेम सरोवर और बरसाना में गहुअर्पण की परिक्रमा संपन्न हुई, जिसमें प्रेम सरोवर यह राधा जी के मादनाक्य भाव को प्रकाश करने वाला कुंड है। यहीं पर वो भाव प्रकाशित हुआ और कृष्ण वृंदावन छोड़कर के चले गए मथुरा, इसका भी प्रधान कारण वही है। देखा जे कृष्ण ने देखा हमारी गोदी में राधिका जी होते हुए भी प्रेम वैचित्र से भूल गई और कृष्ण कहाँ है ये खोज, यही मद्दानाख्य भाव है। गोदी में है और भूल गई। कुछ कुछ प्रेम वैचित्र द्वारका की महिषियों में भी देखा जाता है, किंतु उससे कोटि गुण श्रेष्ठ यहाँ का मदनाक्ष भाव है। उसको प्रणाम करके आप लोग विश्वभानु खोर विश्वभानु जी का कुंड कृतिका के कुंड में गए, आचमन लिया। कभी राधा जी का जन्म वहां पर भी माना जाता है कल्प भेद से, और उसके बाद में हम लोग हमारी यात्रा पार्टी गई शकरी खोर में, एक तरफ विष्णु पर्वत एक तरफ ब्रह्म पर्वत, अब दोनों के बीच में किसी ने प्रश्न किया गोवर्धन पर तो हम अपना पैर नहीं रखते, उसके ऊपर में नहीं जाते, किंतु दोनों पर्वतों के ऊपर में पैर रह करके जाते हैं, वहां कोई उपाय ही नहीं है, उस स्थल को ऐसे पार किया जाए वो पैर लगेगा ही, इतना सकरा रास्ता। इसलिए जहां कोई उपाय नहीं है माता प्रणम्य है, किंतु उस कभी कभी बच्चा मैया के सिर पर पैर भी दे सकता है, तो उसी तरह से वो लोग क्षमा करते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। सकरी खोर में बुढ़ी लीला हुई, डगर मार्ग रोका कृष्ण ने सुबल के साथ और सखाओं के साथ में, और गोपियों ने कृष्ण को लांगा पहना करके वहां गोपी बनाया और देकर और उसको पत्थर से ठुकराया, जिसे कृष्ण ने स्नान कर लिया और उनकी चोटी बांध दी पेड़ों से। मधुमंगल को, कृष्ण को भी, और कहा जैसे आप नहीं करेंगे ऐसा प्रतिज्ञा कराया, तब उनको छोड़ा। उसके बाद में दोहनी कुंड गए, शायद दोहनी कुंड जाने का रास्ता नहीं, पासी में दोहनी कुंड है, विश्वभानु महाराज की गैया वहां का रहती थी, वहीं पर उनका दोहन होता था। और फिर गहवर वन में प्रवेश किया, मूल कुटी चिकसौली ग्राम चित्रा जी का, और वहां मोर कुटी, मानगढ़, दानगढ़, बिलास, ब्रह्म पर्वत पर विश्वभानुपुर बसा है पास में। ब्रह्मा जी ही प्रार्थना किया था जे तुम्हारी हे राधिके, मैं तुम्हारी सब लीलाओं का दर्शन करना चाहता, उनके बल से वो ब्रह्म पर्वत बन गए और वहां पर सब बहुत सी लीलाएं हुई। कृष्ण स्वयं बेश बेश बदल करके और वहां पर आते थे और उनका मिलन होता था। वहीं पर दानगढ़ भी है जहां दान लिया, और वहीं पर मानगढ़ भी है जहां पर राधिका जी ने मान किया। बहुत सारी लीलाएं उस पर्वत पर। इसके बाद में नीचे में विश्वभानु महाराज का भवन है, उसमें श्री राम जी और साथ में राधा जी है। और ये सब स्थान है। पासी में ललिता इत्यादि सखियों का स्थान है। इस तरह से आप लोगों ने यात्रा करके यहाँ पर पधारा। एक बात है विचार करने, इतना महत्वयुक्त बरसाना, किंतु नित्य लीला में, अष्टकाली लीलाओं में राधा जी जावट से आकर मिलती हैं, बरसाना से नहीं मिलती। इसलिए अष्टकाली लीला में जावट का और नंदगांव का महत्व अधिक है। देखा जाए जावट से ही आती हैं, साकेत में आती हैं, नंद भवन में आती हैं राधा जी, वहां रसोई बनाती हैं। बरसाना से कोई उल्लेख नहीं, तो भी विचार करने से उसका महत्व तो है ही है। श्री दाम इत्यादि वहां पर उनके सखा लोग हैं, किंतु मधुर रस का वहां पर कोई प्रकाश नहीं देखा जाता है। अष्टकाली लीला में विशेष करके नाम नहीं आता अष्टकाली लीला में, बल्कि राधा कुंड श्याम कुंड का नाम आता है। वहां पर सखियां मिलती हैं अष्टकाली लीला, और उस अष्टकाली लीला में मध्यान्हिक लीला ये सब, इसलिए उसका श्रेष्ठत्व है।
व्हाट आई टोल्ड यू शुड
हिंदू लीला के समय सुदाम भैया जी जाके रघुवीर को बुला के ले आते हैं में,
उसका उल्लेख उसमें नहीं है। नैमित्तिक की वहां पर अष्टकाली लीला में नहीं, वो तो हम लोग ऐसे बतलाते हैं ऐसा है। इट हैज बीन रिटन इन गोविंद लीला में सर, सो एनी हाउ राधा कुंड श्याम कुंड इज मोर सुपीरियर। नाउ
राधा जी आती है बरसात में नैमित्तिक लीला माना जाएगा,
अब क्या लेने क्या है तुम
लोग। any past times in Australia are not natural energy based, and how can they use for it? It is not natural.
What I told you, Sutta.
She's in the age after marriage, and she's living with her in-laws in Yagra. And therefore, in Ashtakalila, Yagra and Nandiga are more glorious than Varshana. In Ashtakalila, Radha Krishna, they go to Sankhya, to train Sarova, pass them to Yagra, Nandiga, and place it in that area. So in Varshana, Sri Ram is there. So Sri Ram is one of the very prominent friends of Sri Krishna. So this place is very important for those in Sankhya. But for those in Madhuras, there is more Nandagam and Yavas are more important. Because there was mentioning that in the Bhagavad-gita Krishna Bhagavad-gita, there is no discussion of Varsana. But we see some chapters, we know from Samanjali, then Sri Ram, he comes to Yavat and brings his sister back to Varsana, but this pastime takes place only during the rainy season on Bhagavad-gita that is called Raksha Bandhan Day. This is mentioned by Sri Lord Rastakur Park in the Bhagavad-gita Samanjali.
मन शिक्षा का अंतिम श्लोक हम लोग इसके पहले मन शिक्षा के 11वें श्लोक की व्याख्या कर चुके हैं। समंग से रूपे न स्मर विवश आधार और उसमें बतलाया था रूप गोस्वामी पांच उपाय बतलाते हैं साधन राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का राधा दास्य का रास्ता पांच रूपों से साधन है। श्रीमूर्ति की चरण सेवा में प्रीति रसिकों के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थ का स्वादन और स्वजातीय भाव वाले स्निग्ध अपने से श्रेष्ठ रसिक तत्त्वज्ञ वैष्णवों का संग श्री हरिनाम संकीर्तन मथुरा और या ब्रजमंडल में वास करना इन पांचों का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। यदि थोड़ा सा भी हो अपराध न हो तो कृष्ण प्रेम जन्मा ये पांचेर अल्प संग इसके बाद में आज मन शिक्षा गई एकादश बरमी तत् मधुर गया गिरा कायत अति उच्च समधिगत सर्वा सजूठ श्री रूपानुग इह भवन गोकुल बने जनो राधा कृष्ण अतुल भजन रत्न सर्वते। इस प्रकार से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं और इसी बहाने समस्त भक्तों को भी प्रेरणा दे रहे हैं जो इसका पालन करो। जो व्यक्ति सजूत रूपानुग होकर गोकुल वन में तथा ब्रजमंडल में गोवर्धन के संग निकट बास कर मन को शिक्षा देने वाले अति उत्तम इन 11 श्लोकों का मधुर वाणी से उच्च स्वर से अर्थ को भली भांति समझकर गायन करते हैं वे राधा कृष्ण के अतुलनीय भजन रूप रत्न को प्राप्त करते हैं। अब दिग्दर्शनी वृत्ति स्वजूत मैंने क्या स्वजातीय आश्रय स्निग्ध अपने से श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णवों के साथ में अनुगत रहना ही स्वजूत कहलाता है। अपने से श्रेष्ठ भाव वाले रसिक तत्त्वज्ञ वैष्णवों का अंगत में रहना ही सजूत कहलाता है। ललिता इत्यादि सखियां स्वतंत्र नायिका होने पर भी और युद्धेश्वरी होने पर भी राधिका के अनुगत होती हैं, युद्धेश्वरी कहलाने नहीं जाती और स्वतंत्र नायिका नहीं होती। ऐसे ही भागवतोत्तम गण भागवत बहुत शिष्यों के गुरु होने पर भी रूप गोस्वामी के अनुगत रहेंगे। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में उन्होंने कहा है, युथाधिपत्वे अपौचित्यम दधाना ललितादय श्रेष्ठ राधाधिभावस्य लोभात् सत्वं रुचिं दधु। ललिता इत्यादि प्रधान सखियां युथेश्वरी हैं और होते हुए भी युथेश्वरी हैं, नायिका स्वतंत्र हैं, तो भी राधा जी के प्रति उत्पादन के लोभ से उनकी अनुगामिनी सखी के रूप में कार्य करती है, सेवा करती है। इसी प्रकार से साधक भी इस विषय में ऐसी ही इच्छा रखते हैं, कोई भी युथेश्वरी बनना नहीं चाहते। रूपानु किसको कहते हैं? रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के आदेश निर्देश से जिस रस तत्व की शिक्षा दी है और जिस प्रकार स्वयं उन शिक्षाओं का अनुरूप भजन करके जगत में जो आदर्श स्थापित, रागानुगा रागात्मिका भक्ति के अनुगत होते हैं उनको रागानुगा कहते हैं और रूपानुगा रूप गोस्वामी ने बाहरी शरीर से साधक के रूप में और सिद्ध शरीर से मंजरी रूप में जैसे सेवा की है, इसका जो अनुगमन करते हैं वो रूपानुग है। दोनों में रूपानुग और रागानुग में अंतर है। विशेष करके प्रत्येक प्रत्येक रूपानुग रागानुग है, किंतु प्रत्येक रागानुग ही रूपानुग है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रसकाचार्य ने इसी का अनुगमन किया है। ऐसी भजन परिपाटी का अनुसरण करना ही रूपानुग भजन है। गोकुल बने, गोकुल बने मैंने मथुरा मंडल के अंतर्गत कहीं भी मथुरा का इतना महात्म्य बतलाया है रूप गोस्वामी ने मथुरा स्तव में, तो गोकुल का, नंदगांव बरसाने का, वृंदावन का, गिरिराज गोवर्धन और राधा कुंड की तो महिमा की कहानी है। मुक्ते गोविंद भक्ते वितरण चतुरम सच्चिदानंद रूपम जस्यं विद्योत विद्या जुगलम उदयते तारकम पारकम च। जो गोविंद के चरण कमलों में भक्ति रूपी मुक्ति का वितरण करने में परम निपुण है, जो भव सिंधु में तारने वाली और कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाली तारक और पारक जो विद्याओं से जो सुशोभित हैं, एवं निखिल जगत मंडल के शिरोमणि रूप में कृष्ण की बाल लीलाओं के स्थान है, वे वैकुंठ से भी आदरणीय मथुरापुरी हमारा मंगल विधान करें। विशेष करके मथुरा के अंतर्गत में ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल में राधा कुंड श्याम कुंड इत्यादि है, इसलिए मथुरा को और भी प्रणाम कर रहे हैं। इन्हीं के वजह से मथुरा का इतना महत्व है। जिनकी कांति करोड़ों चंद्र से बढ़कर है, अत्यंत वेगवान संसार के अविद्या पंच क्लेश इत्यादि को भी पराजित करने में समर्थ है जो मथुरापुरी, जहां निवास करने से एक दिन में ही हरि भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके महात्म से मायावी देवगण भी भयभीत रहते हैं, सुख सौनक आदि मुनियों के भी मन को हरण करने वाली कृष्ण की लीलाएं जहां नित्य सिद्ध हैं, जो उपकार उपासकों के सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, शिवाजी देवगण भी जिस पुरी में प्रहरी का भूतेश्वर रंगेश्वर पल्लेश्वर और गोकर्णेश्वर इत्यादि रूप में जिसकी पहरा देते हैं, बराह देव यहाँ पर अपनी लीला विस्तार की है। बराह देव है यहाँ मथुरापुरी तुम लोगों को प्रेम भक्ति प्रदान करे, जो मुक्ति रूप वृक्ष के बीज स्वरूप और अनर्थों की परंपरा से निस्तार करने वाली है, जो सब प्रकार से मंगलों से रक्षा करने वाली प्रेम रस के आधार स्वरूप एवं कृष्ण वश्यता रूप कामना को पूर्ण करने वाली है, कृष्ण को सच्चिदानंद में चित्त शक्ति जुगल जहां निरंतर प्रकाशित है, वही मथुरापुर है तुम्हारे लिंग सूक्ष्म शरीर तक का पाप राशि ध्वंस करके प्रेम भक्ति प्रदान करे। हे अवंतिका, हाथ में पिकदानी ग्रहण करो। हे मायापुरी हरिद्वार, तुम चमट भुलाओ। हे कांची, तुम छत्र धारण करो। हे काशी, तुम दोनों हाथों से पादुका लेकर के आओ। हे अयोध्या, भयभीत न हो। हे द्वारके, आयुज स्तुति मत करना, क्योंकि आज महारानी महाराज कृष्ण की महाराज महिषी मथुरा देवी तुम किन करियों के प्रति प्रसन्न हो। ये रूप है जितनी सप्तपुरिया हैं, सप्तपुरिया जिनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं, ऐसी मथुरा देवी उनको प्रणाम करते हैं। तो राधा कुंड और ये सब के विषय में तो कहना ही क्या है। वृंदावन की महिमा वृंदावनाष्टकम इत्यादि में दिया गया है, आप लोग उसे देख लें। मन शिक्षा भजन विलासी व्यक्ति के मन को शिक्षा देने वाले, ये मन को शिक्षा देने वाले हम लोगों को प्रेरणा करने वाले शिक्षाओं को पालन करने के अत्यंत वरम अत्यंत उत्तम चैतन्य महाप्रभु के कृपा से स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी के हृदय भावों को लेकर के उनके उपदेशों को लेकर के रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा लिखा। ये शिक्षाओं के मूल कौन है? महाप्रभु जी हैं। किंतु महाप्रभु से पाया किसने? स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी। तो ये बड़े गोपनीय उपदेश है। मधुर आगिरा ताल और स्वर के साथ श्रद्धालु साधकों के साथ अथवा अकेले कातर होकर के उच्च स्वर से इसका गायन करें। समाधिगत इन श्लोकों के गूढ़ अर्थों को समझकर भली भांति जो इसका पाठ करते हैं, जेशंग सराग भजने बजराज सुनो सिरूप शिक्षित मतानुगमनानुराग जतने नते भजन दर्पण नाम भाष्यम शिक्षा दश्लोक सहितम प्रपठन्तु भक्त्या। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जिनको रसाचार्य सिरूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुरूप ब्रज रीति का अवलंबन कर राधा कृष्ण जुगल के अनुराग में भजन करने की तीव्र लालसा है, उन भक्त जनों को मन शिक्षा के साथ इस भजन दर्पण नामक भाष्य को मन लगाकर प्रीतिपूर्वक अवश्य ही पाठ करना चाहिए। इति श्री और मन शिक्षा समाप्त। आज मन शिक्षा हम लोगों की समाप्त। Oh, explain.
Shirati Bhakti on Vira Sodhana. So when you go to Vasana, there the Brahmaji has become Brahma Parama tradition to Krishna Father. And when you go to Sakri Kuala, then they have both sides and we have to keep our feet there. So will it be an offense or not? Would you explain that there is no other way to enter into the Shabadapur? This is the only way. So just as sometimes a child, then they play with their parents and keep their feet on their body or on their head anywhere, and the parents out of love forgive them. So simply, there's no other way for the devotees to enter into the Shabadapur. And like an affectionate parent, then Prabhupada and Vishnu Parvati, they tolerate and don't take any offense. So now the Guru is coming to Srimana Siksa, last verse. In the previous verse, Srila Ramakrishna Swami gave an instruction. Tarita Chandra Saranapati Panchamrita Milam. Every day, one should drink Panchamrita. So this Panchamrita, Ija, Kusikul, Archan, Akya, reading Bhakti Shastra, speaking Harikata, Shravan, listening to the lips of the pure devotee, Jnana, meditation, and Nati, giving obeisances. Or alternatively, Panchamrita means Sarva Sarana Akya, Bhagavad Shravan, Sutra, Sri Mutya, Shadya Seva. And among them, Sadhu Sangha is the most prominent. That was the instruction of the 11th verse. Now, in the 12th verse, Srila Prabhupada does the one point. Praise. A dog the lion Sri Rupa Goswami and his followers, and who takes a residence in Gokulvan, and loudly sings these 11 excellent instructions to the mind in a melodious voice with a full understanding of their meaning, will certainly obtain a matchless jewel of worship and service to Sri Sivaya and Krishna. So, in context, the prominent words of this verse have been explained. First of all, Sayuta. Sayuta means with this group of followers, means the followers of Sri Rupa Goswami. They are Rupanuga Vaishnavas. So here the word Sayuta indicates those Rupanuga Vaishnavas who are the followers of Rupa Goswami, who have the same inclination. They are perfected in the mood to which one is aspiring. They are, that means sajatiya. They are snigdha. That means they are very soft-hearted and affectionate to oneself. And who are more advanced than oneself. One should remain under the guidance of such persons. Although Lalita Sakhi and other Sakhis are Swatantra Naika, that means independent heroines. And they're also Yukteswaris. They are group leaders. But still, they remain under the guidance of Srimati Radhika. So this example is an analogy to show that simply, even though the Uttam Bhagavat Vaishnavas, who are Rasika and Rupanuga, Tatpurkya, how they are so qualified. Even though they may be gurus, and they may themselves have many followers, many disciples, but they always conceive of themselves as the followers of Srila Rupa Goswami. So in this connection, Sri Uttaridhamani, in the Hare Krishna Prana, Srila Rupa Goswami part of Britain, Yutari Patwe Kyo Chitran, Vedana Lalitadaya, Shastaraya Vivarasya, Lokat Sakyam Uchindandu. Although Lalita and the other principal Sakis are fully qualified and competent to be Yudhishthiras, for independent group leaders, yet they are extremely eager to please their devil Sakhi Srimati Radhika, and therefore they prefer to adopt the mood of Anugami Sakhis. They become assistants to Radhika, who is in the role of New Testament. This is their preference. They do not care to assume the mood of Swatantra Nayikas or independent heroines or independent group leaders. So just as they are qualified and have no desire to be independent group leaders, in the same way, the Rupa Rupa Vaishnavas, though they have many followers, they always conceive of themselves as the followers of Srila Rupa Goswami Pada. Then, this verse mentions Rupa Anuga, Swayuta Sri Rupa Anuga. The word Rupa Anuga means that Srila Rupa Goswami taught the principles of Rasa Tattva on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Srila Rupa Goswami performed bhajan in accordance with those principles, and thereby he established the ideal standard for Braj Bhajan for the whole world. Srila Jiva Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, and other Rasika Charis followed the system which was epitomized by Srila Rupa Goswami. Therefore, to follow this method of Bhajan is called Rupa Anuga Bhajan. The eternal residents of Vrindavan are called Ragatrika, and those who do Bhajan following in the moods of the Ragatrika devotees are called Ragatuga Sanatas. So, among those who are Ragatuga Sanatas, those who outwardly follow Srila Rupa Goswami's Bhajan Pranali, method of devotion, and inwardly follow Sri Rupa Goswami's moods as Sri Rupa Mandiri, they are called Rupa Anuga. Therefore, all the sadhaks who are Rupa Anuga can be called Radha Anuga, but all the sadhaks who are Radha Anuga, in other words, following the various moods of different residents of Braja, they cannot be called Rupa Anuga. Then, Priyabhagan Gokula Bhane. What does Gokula Bhane mean? In the forest of Gokul. So here the word Gokula Bhane refers to Varsana, Nandagaon, Vrindavan, Giraj, Govardhan, and all these common places. When we come to this day, Gokul Bhane refers to any charming place in Sri Mathura or in the entirety of Vrajamandal where Krishna enacted his pastimes. So in Stava Mala, Srila Rupa Goswami Pada has written Sri Mathura Stava. In this Stava, he prayed. He glorified Mathura. Mathura Puri is thoroughly adept at bestowing mukti, liberation, in the form of devotion to the lotus feet of Sri Govinda. She enables the living entities to cross over the ocean of material existence, and she bestows Krishna praying. Thus she is fully endowed with two types of knowledge, known as parak, the power to take one across, and parak, the power to bring one to the ultimate goal. She is the crystal of all places in the entire creation. Krishna enacted his childhood pastime in other villages here. May that Sri Mathura Puri, who is worshipful even for Vaikuntha Dham, bestow all auspiciousness upon you. The radiance of Mathura Puri is superior to millions of moons. The five types of misery begin with avidya, rag, dvesh, ashmit, avivivesh. They are powerful warriors, perpetuating the raging fire of material existence. But these five types of misery, these warriors, are unable to conquer Mathura Puri. If one resides there, one is easily freed from the sufferings of material existence. It is stated in Shastra that simply by residing in Mathura for one night, one will attain Hari Bhakti. So, various demigods, being aware of the greatness of residing in Mathura Puri, are capable of doing anything to her inhabitants. The pastimes of Sri Krishna steal the hearts of the great sages, like Shukadeva Goswami and Chandra Krishi, and those pastimes returning to Gaurava India. Shiva Tirupati fulfills all the desires of the worshippers, and even Lord Shiva and other devotees hankered to carry out the duty of being a watchman. So Lord Shiva became a watchman in the Tirupati in the form of Bhuteshwar Mahadev, Tirupeshwar Mahadev, Ravishwar Mahadev, and other forms. There, Sri Gurudev resides, and he sings the glories of Mathurapuri. May that Mathurapuri bestow great bhakti upon you all. Mathurapuri is the seed of the tree of liberation, and she delivers one from all Naraka. She protects one from all auspiciousness, and is the foundation of Premarasa. She fulfills all desires, and enables one to attain complete surrender to Sri Krishna. Krishna's chit shakti is eternally manifest there. May that Mathurapuri eradicate all your sins, even to the extent of eradicating your subtle body, and endow you with prema bhakti. Srila Rupa Goswami Pad pray. Hey, Bhavanji Purush, that is Ujjain, please pick up the pot that is used to split out two bitola. Oh, Mayapuri, Haridwar, you should take a fan and begin fanning. Hey, Kanchipur, you should hold up the umbrella. Oh, Varanasi, Kashi, you should stand in front, holding wooden sandals in your hands. Hey, Ayodhya, don't feel apprehensive that your services may be rejected. Oh, Dwarka, don't pray now, because Sri Krishna's queen, Mathura Devi, is pleased with all of you who are on my service. So in this verse, Sri Rupa Goswami Pad mentions the seven sacred cities which bestow liberation: Avanti, Haridwar, Kanchi, Kashi, Ayodhya, Dwarka, and Mathura. But Rupa Goswami broadcasts the superiority of Mathura by describing how the other six holy cities are all engaged as maidservants in the service of Mathura Puri. So, we should think that if Mathura Puri is so great, then what to speak of the glories of Giriraj Govardhan and Radhakrishna Shyamakumar. So, Mam Sri Rupena Manasik Shadda. Here, Manasik Shadda means giving instructions to the mind. These words indicate that this prayer, known as Manasiksha, instructs the minds of persons who are very, very anxious to follow the path of Guru Maharaj. Varam, the word Varam means most excellent. It indicates that these verses are most excellent. Why? Because they have been revealed by Srila Raghunathas Goswami. But Srila Raghunathas Goswami received these instructions from Srila Rupa Goswami Pad. And Srila Rupa Goswami Pad received these instructions from Sri Sarvananda Goswami. And Sri Sarvananda Goswami received them from Sri Chaitanya Mahaprabhu. And therefore, these instructions are the most excellent and confidential instructions. Then, Madhavaya Uchchai means one should sing this Manasiksha in a loud, melodious voice. It means that one should sing these verses with proper chanda, mita, and melody, either alone or in the company of other faithful sadhakas. One should sing in a loud voice, overflowing with intense feeling. Samadhigata. In the second line, the words are mentioned Samadhigata. Samadhigata means thoroughly understood. One should recite these 11 verses with a thorough understanding of their deep and confidential meaning. So finally, Srila Bhaktivinoda Thakur completes his commentary with a Sanskrit verse. In this he says, those who have an intense desire to worship Sri Sri Radhakrishna Jula, who is deep attachment, by adopting the methods of Prabhupada in full accordance with the instructions of Rasacharya Sri Rupa Goswami, should study Manasiksha with great love and at the same time give a very serious attention to this commentary known as the Bhajan Dharpan commentary. Thus ends the Bhajan Dharpan commentary and Sri Guru's Dikashini Bhati extended translation of the Bhagavad Gita, Manasiksha and Sri Guru's commentary.
ভানুপুরে জন্ম লভিব যাওয়াটে বিবাহ
দেখিতে দেখিতে ঘুরিব তবে নিজ তুলা
Bye.
Thank you.